अल्लाह सुभान तआला कहते हैं मेरी ये पकड़ जो तुम तक आई है ये कोई ऐसे नहीं आई। आयत 131 देखिए, ज़ालिका अल्लम यकु रब्बुका मुहलिकल कुरा, ये इसलिए है कि आपके रब की ये सुन्नत ही नहीं है कि वो बस्तियों को बर्बाद करे, भी जुल्म जुल्म के साथ, वाखलुहा गाफिलून जबकि इसके रहने वाले बेखबर हों। ये आयत हम सब के लिए एक बहुत बड़ी हुज्जत है, दूसरों की तो बात कम करें हम अपनी बात ज़्यादा करें। और वो क्या है कि जब तक ये कुरान हमारी ज़िंदगी में नहीं खुलाता, शौरी तौर पे नहीं बताता दीन का, हमारी पकड़ इतनी नहीं होती थी, तब भी हम बीमार होते थे, लेकिन वो वैसे ही होते होंगे, शायद अल्लाह हमारे दर्जे बुलंद कर दे। कह लें कि जो कुरान से पहले की हमारे गम बीमारियां दुख थे ना, उसके कफारे में अल्लाह हमें दीन पे ले आया, ये अजर मिला। अब कुरान से जुड़ने और पता चलने के बाद कि ये किताब हिदायत है, ये ऑक्सीजन मास्क है, अब अगर हम गफलत का शिकार होंगे तो अब जो पकड़ आएगी ना वो सजा होगी। कितनों को बात समझ आई है? देखिए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह 700 पारे पढ़ा दिए ना, तब हक रखते हैं ना कि आपसे 7 पारों का टेस्ट ले लें। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस सैटरडे को आपका 15वें पारे का टेस्ट है, हम नहीं करेंगे ना सर, करेंगे भी तो आप नहीं देंगे, ऐसे ही है ना। जो पढ़ाया होता है ना उस्ताद भी उसी में से टेस्ट लेते हैं। अल्लाह भी जब तक बंदों को बताता नहीं है टेस्ट नहीं लेता। इसीलिए आप देखेंगे कि दीन पे आने के बाद छोटी छोटी बातों पे पकड़ हो जाती है। आप इंजॉय करते हैं, वाह कितना मजा रहा, देखेंगे जो होगा, छुट्टियां इंजॉय करते हैं मजे में, शादी में, अभी कौन सा इतना बदली है, अभी 5 बार ही तो पढ़े हैं, नो प्रॉब्लम। आप मस्तियां करके आते हैं छुट्टियों में, वो सारी मस्तियां बाद में अल्लाह किसी भी तकलीफ में डाल के पूरी करेगा। यानी मैं अपने आप को अक्सर कहती हूँ कि अब तेरी निजात का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस पढ़े पढ़ाए पे अमल कर ले। कुरान पढ़ने के बाद बंदे पे अल्लाह का मामला सख्त हो जाता है। आप सूरह फातिर में पढ़ेंगे, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुमको उम्र ना दी थी, मा ततज़क्कर फी, कि तुम उसमें नसीहत पा लेते। सही रिवायत में आता है कि जिनको अल्लाह ताला ने 60 साल की उम्र दी उनका हिसाब सख्त होगा, क्योंकि उसका उजर नहीं चलेगा। वो कहेगा अल्लाह हाँ ये था, बच्चे थे, घर थे, उनकी शादियां हो गई, उनके ये थे वो थे, अच्छा मौका नहीं मिला, कितनी उम्र थी तेरी, बस ये 60 से ऊपर कुछ साल। कहा नहीं, तेरा उजर झूठा, 60 साल में भी तुझे मौका नहीं मिला कि तू मेरी किताब के लिए फोकस हो। हमें तो अल्लाह के बंदे ही से 1 साल 1.5 साल के लिए लोग फोकस नहीं होने दे रहे, हमारी इसमें भी कितनी चीज़ें कट जाती हैं। अगली आयतें देखिएगा, आज हम अल्लाह के हिस्से में से कितना दूसरों को दे देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह कहते हैं मैं गाफिलों को नहीं पकड़ता। हो सकता है कि कोई किसी जगह जिस्म फरोशी करने वाली औरत को अल्लाह छोड़ दे उसकी गफलत की बिना पे, लेकिन इल्म नेमत बड़ी है। देखिए इसको इस तरह समझे, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं जो आ रही हैं, किसी को डायमंड का सेट कोई दे दे और किसी को सिर्फ कोई जरकोन का या कोई बिल्कुल सस्ता सा सेट दिया हो, किसका मुहासबा ज़्यादा होगा, किसको इंस्ट्रक्शन ज़्यादा करे देगी माँ, सोच के देख के पहनना, गिरा ना आना, कुछ ना करना, जिसने डायमंड पहना हुआ है। और अगर कोई लोहे का सेट पहन के चमक वाला चली भी गई तो कहे कि उसको भी, लेकिन हो गया तो हो गया, और दुख किसके घूमने का ज़्यादा होगा माँ को। तो डायमंड की क्या शान है इस किताब की आयतों के आगे, कितने कीमती हैं आप, आपको इसका भी अंदाज़ा भी नहीं है। हर दिन अल्लाह ताला आपको कीमती करता जा रहा है। आपको तो सूरह अल-अनाम की एक एक आयत के सब फरिश्ते उतरे थे, याद है इंट्रो, इसके बोझ से, मैंने अभी पढ़ी नहीं लेकिन मुझे याद है कि ये बातें हुई थी कि ऊँटनी की टांगें दबने लगी थी, इसकी एक एक आयत के साथ इतने हज़ारों फरिश्ते उतरे। तो वो आयतें आपके सीने पर उतरे तो क्या आपके ऊपर इसका कोई बोझ ना हो, आपके दिल में कोई भी हलचल ना हो, ठंडे ठंडे पढ़े और ना पढ़े बराबर, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर। हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? तो फिर दो में से एक चीज तो इंसान को चूज करनी पड़ेगी, या तो भटकना दौलीन, नहीं सीखते छोड़ो आज से खत्म, नहीं पढ़ते भी हम नहीं किताब का बोझ ले सकते, छोड़ दे दौलीन बन जाए ठीक है काफी है, اور یا پھر مغدوب. اور مغدوب کون ہوتا ہے؟ ضال کون ہے؟ جو سیکھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہے کہ عمل کرنا پڑے گا. اور مغدوب کون ہے؟ جو سیکھ کے عمل نہیں کرتا. نجات کس میں ہے؟ ضال بننے میں ہے، مغدوب بننے میں ہے، تو کس میں ہے؟ انمت علیہم. اور وہ کون ہے؟ سورہ نساء پڑھ چکے ہیں، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اور لمبی لسٹ ہے. تو دعا کیجئے کہ بس اب اللہ ہمیں جس طرح بھی کرے عمل کروا کے اس دنیا سے لے جائے. اب تک صحابہ کرام کی وہ جو تڑپ تھی نا اندر کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور نعمت کا حساب تو ہوگا. جو نعمت ملی، یہ علم کی نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس کا حساب تو ہوگا. ایک اور جگہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وما کن معذبین حتا نبعث رسولا، ہم کبھی کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم وہاں کسی رسول کو نہ بھیج دیں. آیت نمبر 15 ہے سورت بنی اسرائیل کی. نبوت کی شان بھی اس سے پتہ چلتی ہے مجھے اور آپ کو. سورت نساء 65 میں ہم لوگ پڑھ چکے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم کہ یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے حکم نہ بنا لیں ان معاملات میں جس میں جھگڑتے ہیں، پھر اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی نہ پائیں اس فیصلے پر جو آپ ان کے بارے میں کر دیں، اور اس کو دل کی خوشی سے مان لیں. تو آئیے اللہ کے نبی کی دی ہوئی شریعت کو دل کی خوشی سے مان لیں. دیکھیے فرق تو اتنا ہی ہے نا، دو لفظ لکھیں صرف اپنے پاس، پھر بات تھوڑی سی شاید آسان ہو جائے. ایک ہے کمپرومائز لکھیں، اور ایک ہے سیکریفائس. کیا فرق ہے دونوں میں؟ مثال لے لیتے ہیں، شادی ہوئی ایک لڑکی کی، سسرال کا ماحول موافق نہیں لگا، لیکن جینا تو ہے، رہنا تو ہے، اب کیا کرتی ہے؟ ایک صورت کیا ہے؟ جلتی، کڑتی، روتی، دکھی، ہر وقت ہی جلی کٹی، اور کہتی کوئی بات نہیں، اب میں نے رہنا رہ رہی ہوں. اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے؟ سیکریفائز. نہیں، یہ کمپرومائز نہیں ہے، یہ سیکریفائز ہے. ہر وقت وہ اپنے آپ کو قربانی کا بکرا سمجھ رہی ہے، دکھی ہے، جلتی کڑتی، اور ظاہر ہے جب وہ جلے کڑے گی تو پھول تو نہیں برسائے گی نا، وہ دوسروں کے لیے بھی ناسور بنے گی. ایک دوسری صورت ہوتی ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ملنا تھا مل گیا، چینج تو آ نہیں سکتی، چلو پھر میں اسی کے اندر سے بیسٹ لیتی ہوں. اس کو کمپرومائز کہتے ہیں. خوشی سے بھی شریعت کو ماننا ہی ہے تو نہ خوشی سے بھی ماننا. کچھ روتے دھوتے جلتے کڑتے، ہائے یہ، ہائے وہ، یہ وہ، کیسے تو مان تو وہ بھی رہے، ماننا تو ہے نا. آپ لندن میں رہتے ہیں، یہاں کے کیا سارے رولز آپ کو پسند ہیں؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے لیٹ ہو رہے ہیں اور ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ ریڈ لائٹ پہ گاڑی کھڑی کریں اور مکے مار رہے ہیں اسٹیئرنگ پہ، ہائے کیا مصیبت ہے ان کو، کیا ان کو پتہ نہیں کسی کو جلدی جانا ہے، اور دوسرا بندہ سکون سے بیٹھا ہے کہ اب جو بھی ہو سکتا ہے اچھا، بلکہ اس سے ایک منٹ میں کچھ اور کر لوں جو نہیں کر سکا. آپ کی مرضی ہے نا، خوشی سے بھی جینا ہے تو نہ خوشی سے بھی جینا ہے، رو کے بھی ادھر ہی رہنا ہے تو ہنس کے بھی رہنا ہے. تو اللہ کی شریعت کو اپنی خوشی بنا لیں، یہ ہے کامیابی کا راز. اور اس پہ اپنے دل کو چیک کیا کریں، کیا اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہوتی ہوں، راضی ہوتی ہوں؟ جب آپ اس طریقے سے معاملہ کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے اندر سکون ڈال دے گا. شروع شروع کے دن مشکل بھی لگیں گے، لیکن بعد میں آسان ہو جائے گا سب کچھ. اور یہاں آخری بات کر کے چلتے ہیں کہ کسی جگہ رسول کا آنا اور اس کا انکار کرنا، یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہوتی ہے. ظلم ہے یہ بہت بڑا کسی بستی والوں کا اپنے اوپر کہ رسول کو توڑ دے. پہلے دور میں کیا ہوا، نبی آتے تھے، جب قومیں نہیں مانتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیتے تھے ہجرت کر جو. اب سورۃ الاعراف سے اب ساری کہانیاں پڑھیں گی نبیوں کی. نبی جو ہی اس بستی سے نکلتے تھے اس بستی پہ عذاب آ جاتا تھا. آپ کہہ لیں کہ نبی کسی بستی میں روح کی طرح ہوتے ہیں، جب روح نکل جاتی ہے تو بدن کو بھی جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اللہ اپنے نبی کی امت کو پورا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، इसको अजाब इस्तेसाल कहते हैं, जड़ से ही ख़त्म कर देना, असल ही ख़त्म कर देनी, अलिफ सीन ता और स्वाद या लाम आएगा इसके अंदर। इसलिए अल्लाह ने जब अपने नबी को मक्का से मदीना हिजरत करके गोया के मक्का को खाली किया नबी से, तो मक्का पे अजाब नहीं आया बल्कि किस्तों में, ये सूरत अल अनफाल और तौबा में हम अब डिटेल से हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ जंगों की सूरत में उन लोगों को ख़त्म कराया जिनके अंदर वाकई खैर नहीं थी, और जो खैर वाले थे उनको बचा लिया। क्योंकि अगर एक अमूमी अजाब आता तो सब ने ख़त्म हो जाना था। तो लिहाजा आज हम और आप ये जो नातों में कहते हैं ना कि नबी के ज़िंदगी में होता और नबी का मैं दौर देखता, मैं सोचती हूँ अपने तौर पे कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की हम पे रहमत है कि हम नबी के दौर में नहीं आए। बात समझ रहे? नबी के दौर में किसी का आना और अमल ना करना ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। आगे चलिए आयत 132, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, और हर एक के लिए दरजात है इनके अमल के एतबार से। वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और आपका रब बेखबर नहीं है इससे जो ये बातें करते हैं, जो ये जो काम ये लोग कर रहे हैं। ये किन दर्जों की बात है? जिन्होंने नबियों के आने पर अल्लाह की बात को मान लिया और उस पर चलते गए। वलिकुल्लिन दरजात, दर्जे अल्लाह देता है। देखिए, किसी के दर्जों को देखकर हम उस पर रश करते हैं, हसद करते हैं या कमेंट करते हैं, इसकी बजाय देखिए कि उसको ये दर्जा क्यों मिला। अल्लाह ताला ने ये कैसा खूबसूरत क्राइटेरियन हमें दे दिया कि जन्नत जैसी नेमत भी दर्जों में मिलेगी। जिस दर्जे का अमल उस दर्जे की जजा। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में हमारा अमल डिचकू डिचकू हो, बीच में है? अफतू मैन अभी बात दिल किताब व तक फुरून अभी बात, आधे दिन में हो और क़्यामत के दिन हमें पूरी जन्नत मिल जाए, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा रब तुम्हें बताता है कि तुम अल्लाह के पास से जो दर्जे पाते हो वो अपने अमलों पे पाते हो। अगर आप में से आप अपने बच्चों को ही देख लें, कोई फर्स्ट आता है और कोई बिल्कुल पूरे नंबरों पर पास होता है, एक तो होती है अल्लाह की नेमत, किसी की याददाश्त ही अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, लेकिन बच्चों के रवैये में फ़र्क होता है। कई बहुत ज़हीन होते हैं, पढ़ते ही नहीं तो बस पूरे पूरे नंबर लेते हैं। माएँ कहती हैं कभी तुम अगर पढ़ जाओ ना तो तुम टॉप करो। तो आप और मैं अपनी पहचान खुद करें, मेरे पास क्या नेमत है अल्लाह की और उसको कितना इस्तेमाल करती हूँ। अब आप टेस्ट पर ले आए इसको, नंबरों के टेस्टों पर आप बात करें तो शायद आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए, जो बड़ी ही ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। जिस तरह आप एक एक नंबर को देखते हैं ना, देखते होंगे इधर क्यों कटा, रूट वर्ड ठीक था या क्या था या इधर क्यों हुआ, इसी तरह आप अपने अमलों को देखें या अपने लिए अमल लिखें। जितनी गहराई से अपने क्वेश्चन पेपर को वापस आने पे चेक करती हूँ, इतनी बारीकी से अब मैंने अपने अखलाक, अपने एटीट्यूड और अपनी इबादत मामलात को देखना है। अल्लाह की अदालत तो बाहर की है, आप दुनिया की अदालत में खुद को खुद नंबर दे देंगे। और यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जिस तरह इंसानों के मुख्तलिफ दर्जात हैं ना और उनको जन्नत या जहन्नुम मिलेगी, इसी तरह जिन्नात को भी जन्नत या जहन्नुम मिलेगी और उनके मुख्तलिफ दर्जे होंगे। और बाकी रह गए कि तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे लिए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। इसीलिए फिर आगे फरमा दिया आयत 133, वरब्बुकल गनीयुज़ुर रहमा, और आपका रब तो गनी है, रहमत वाला है। ये है अल्लाह की वो सिफत जिसका यहाँ तफसील से तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी को आप कहते हैं नमाज पढ़ो तो आगे से कोई मन चला क्या कहता है, देखो अल्लाह को हमारी नमाजों से क्या लगे, उसको क्या लगे, उसकी तो इतने लोग इबादत करते हैं। सुनी कभी आपने किसी के मुंह से ये बात? कुछ लोगों को जब इबादत का या नेकी का कहा जाए तो कहते हैं लो जी अल्लाह को क्या परवाह है हमारी नेकियों की, और वो तो बस ऐसी नुक्ता नवाज है और दिस एंड दैट। तो फिर उसका जवाब क्या? अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, मैं नमाज पढ़ूँ, मैं एक नमाज भी ना पढ़ूँ, मैं सजदा करूँ ना करूँ, वो तो गनी और ज़ुर्रहम है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, अल्लाह को परवाह नहीं है। किसी को अजाब देकर इसका कोई फायदा नहीं और किसी की बंदगी और इताअत से इसका कोई रुका हुआ काम चल नहीं सकता, वो इन सब चीज़ों से बेनियाज है। अब देखिए कि अल्लाह सुबहान ताला गनी है ना, बहुत सारे लोगों को गनी का मतलब नहीं पता होता। एक हदीस का खुलासा है कि लैसल गिना बिल माल, गिना कह लीजिए दौलतमंदी को, दौलतमंदी माल के साथ नहीं होती कि आपके लाखों हैं, हजारों है, करोड़ों है, क्या, बल्कि दौलतमंदी क्या है, दिल से। मिसाल है कि एक बंदे के पास सिर्फ 100 रुपये हैं फिर भी उसका दिल बादशाह, कोई आया तो उसने 100 रुपये में से कितने पैसे दूसरे को खिला दिए, खातर कर दी, कहता अच्छा जो होगा कल देखेंगे, ये बादशाह। और एक बंदा जिसके पास 10,000 है और गम अभी ये पड़ा हुआ है कि हाय अगले महीने पता नहीं क्या होगा और बच्चों का क्या होगा, तो वो गरीब है ना। आपने अपनी फैमिलीज में भी ये चीज़ देखी होगी, जिन रिश्तेदारों के पास थोड़ा होता है ना, हमारे अपने लोगों में है ना ऐसे चंद साथी, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है उनके ऊपर कि उनका हिसाब आसान है। मुझे ऐसी एक सिस्टर याद आ जाती, वो कहती हैं पता नहीं मेरी कहाँ से जरूरत पूरी हो जाती है, मैं सोचती हूँ कि हाय वो फलां बच्ची है, उसका बच्चा होने वाला है, फिर उसको ये देना होगा लेना होगा। जैसे माओ के होते हैं, बहुत सारी बेटियाँ उनकी, सारी ज़िंदगी हमने उनको एक ही हाल में देखा है, लेकिन इतना कॉन्टेंट हर शादी में वो दूसरे तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा अच्छा दे के आती हैं, हर गर्मी सर्दी दुख सुख पे वो सबसे ज़्यादा देती हैं। मेहमान उनके घर आते हैं उनका पाँव नहीं टिकता ज़मीन पर, और कोई कहे ना इतना खर्चा नाम पे करो, कहती मेरे काम हो जाते हैं, बस सोच आती है एक दफ़ा, और कहती उसके बाद पता ही नहीं चलता कहाँ से पैसे आए। ये गिना होता है। और मैंने ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबपति करोड़पति लोग देखे हैं कि वो सिर्फ इसलिए क्या बचाए कि बर्तन धोने पड़ेंगे, बाहर से कह दो कि चलो जी जाओ जी घर पे नहीं है, है सब कुछ, निकालने के डर से मेहमान के आगे नहीं रखते, समझते हैं ना। तो अल्लाह बेनियाज है। मैं कहती हूँ आप सब भी ये दौलत मांगें। मैंने किसी को दुआ दी ऐसे ही किसी मौके पे, मैंने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको गिना दे दे, कहती मुझे ये बता तो दो ये होता क्या है। मैंने कहा जब आपको मिलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा गिना क्या होता है। गिना दिल का सुकून है, कोई बात नहीं है चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो नहीं है। ये जो हमने अपनी ज़ात के साथ बैसाखियाँ लगा रखी हैं ज़रूरतों की, आप देखिए कि हम कितने ऐशकोश हो गए ना, किचन में काम ही नहीं कर पाते जब तक 10 मशीनें और 10 चमचे और डिशें और डोंगे मेरे पास ना हो। हैं तो इस्तेमाल कर लो, नहीं है तो ना सही। आप कपड़े जेवर जूती जो भी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, आप ख़ुद को देखें क्या मैं इनकी मोहताज हूँ, मैं इसके बगैर बाहर ही नहीं निकल सकती, मैं इसके बगैर सो नहीं सकती। बाज लोग तो यकीन करें इतने दिल के तंग है अपने तकिए के सिवा उनको नींद ही नहीं आती, गनी बनी है। एक ऐसे छोटे से तकिए के पीछे आप अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं, मुझे गद्दा सही नहीं मिला। आज आप देखिए ना इंसानियत के ज़ाहरी सुख का कितना सामान है दुनिया में। किसी ने कहा वो गद्दे आ गए हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी ढूंढने चले जाएंगे, तो मैं नहीं बताती। तो वो बता रही थी कि ऐसे गद्दे आ गए अब ये कमर के दर्द वालों के लिए और ये सर के। मैंने कहा ये बताओ कोई ऐसा गद्दा है कि बंदे को नींद ना आ रही और वो सुला दे, दिल पर कोई बोझ है, कोई गिल्ट है, कोई गम है, कोई बीमारी है, कोई है ऐसा गद्दा? अब वो गद्दा तो आके आप उल्टे तो वो भी आपके साथ उलट जाए, आप सीधे तो वो भी सीधा, आप टेढ़े तो वो भी टेढ़ा हो गया। ये बताओ कि कोई गद्दा नींद देता है? इतना बंदा, एक रात आपको ज़मीन पे सोना पड़े और एक रात आपको नरम बिस्तर पे सोना पड़े, बराबर है। उधर शुक्र है, इधर सब्र है, और ये सब्र वाला शुक्र है, ये भी नहीं कि जलता हुआ सब्र है कल कहाँ सोए हुए थे। और इस पे अपने दिल को खोल के देखें। मैं सोचती हूँ कि ये वो पर्चा है जिसके नंबर आप दुनिया में खुद लगा लेते हैं कि अल्लाह तेरे से उस दिन भी उतनी खुश थी जिस दिन किसी नरम बिस्तर पे सोई हुई थी जितनी आज थोड़ी ज़मीन पे जिसमें बिस्तर भी कोई नहीं है मैं खुश हूँ। फिर गनी आप, वरना आप मोहताज हैं, आप इनकी खिदमत कर रहे हैं। ये दुनिया की चीज़ें हमारी खिदमत के लिए हैं, और नहीं है तो आप इनकी परवाह भी ना करें। वो किसी ने कहा ना कि दरवेशी क्या है, ऐसे ही किसी की बात है, तो उसने कहा कि ना मिले तो सवाल ना करे, मिल जाए तो जमा ना करे, बगैर मांगे मिल जाए तो मना ना करे। बात समझे, ये है दुनिया, कोई तलब नहीं है, मिल जाती है हलाल से तो ले लो, कोई मना नहीं। आपने ये किसी को सुनानी होगी ना, रिकॉर्डिंग से सुनिएगा। यकीन करें मैं कहती हूँ, दुनिया में सिर्फ वो बंदा खुश है जो गनी है, गिना है, वरना खुश नहीं है। अच्छा नहीं लगता बातें करना अपनी ज़्यादा, लेकिन मैं कई ऐसी मिसालें अपने इर्द गिर्द देखती रहती हूँ 24 घंटे। नहीं, इस चीज़ के बगैर गुजारा करना है, इसका क्या अल्टरनेट है? इससे भी कोई खुशी है? आप देखिए ना, आप अपने ऊपर ले, शौहर बीवी बैठे हैं, बेहतरीन पायरेक्स का डिनर सेट सामने है, नाश्ता भी है, खाना भी है, और एक कम उधर सोजा हुआ, एक उधर सोजा हुआ, और दोनों लड़के ही उठते हैं उस टेबल से। सोचिए ज़रा, एक कपल ये सोचे आप, कैसा तसव्वुर आता है? और एक आप सोचते हैं कि एक प्लास्टिक की डिस्पोजेबल सी प्लेट जिसमें जो भी है, और दोनों प्यार से उसको खा रहे हैं, और वो कहते हैं हमसे भी बड़ा कोई खुश है। आप किसको कहेंगे कि कौन खुश है? जो थोड़े भी खुश है। देखिए, जो ज्यादा चीजें लगा के खुश हैं तो फिर डर है ना कि जब चीजें नहीं होंगी तो दोनों नाराज होंगे, दुखी होंगे। जैसे एक बंदा ऊपर है तो खुश है, लेकिन डर है ना कि ऊपर से गिर सकता है। तो जो नीचे ही खड़ा खुश है उसको किसका डर है कि मैंने कहाँ गिरना है? ये गिना इंसान की जिंदगी का असल हुसन है। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, आपने महंगे से महंगी चीज भी इस्तेमाल की हुई है सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्मत पे हलाल हो जाए। और आपने बोरिए पे और खजूर की चटाई पे भी अपने आप को लिटाया हुआ। एक मौके पे जब आपने अपनी बीवियों के साथ हीला किया तो घर के ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आपको मिलने आए, क्योंकि उनकी बेटी भी थी अल्लाह के नबी के निकाह में, तो देखा कि अल्लाह के नबी चटाई पे सोए में और आप ऊपर का कपड़ा उतारा हुआ था। तो आपको देखकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो आपके जिस्म के ऊपर चटाई के निशान थे। ये देख के उमर तड़प उठे कि अल्लाह के नबी कैसरो किसरा तो नरम गद्दों पे सोएं और आप इस चटाइयों पे सोएं, हुक्म करें मैं आपके लिए यहाँ गद्दा ले आऊं। तो कहा उमर, अभी तक उसी जहालत में, यानी तुझे भी ये शक है कि मैं सच्चा नबी नहीं हूं इसलिए मेरे ये हालात है, मैं इस पे खुश हूं। तो बहरहाल अल्लाह के गनी होने की वजह से आज मैं और आप बचे हुए हैं। ये जो अल्लाह की यहां सिफत है ना, इस पे भी बात कर ले। हमें कितना गुस्सा आता है, सुबह मैंने ही अभी आपके सामने इतना दुख खोल दिया ऐसे ही जज्बात में आके, एक लड़की को देखकर। क्या अल्लाह नहीं देख रहा? क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो गनी है। चलें, छोटा सा होमवर्क लिख लें अगर आपका दिल चाहता है, असमाल हुसना की सीरीज में से आप डाल दें उसका लिंक पेज पे। आप सिर्फ अल्लाह के नाम अल गनी को सुनें।